212वीं गाथा है। धम्म मधम्मम गमनत्थाणान कारणं कमसु जीवान पुग्गलाणं बिन्निविलोगप्पमाणानि। धर्म और अधर्म द्रव्य, गमन और स्थान यानी ठहरने,
कारण है क्रमशः, यानी धर्म गमन में सहायक है और अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक है। और किनके गमन और ठहरने में सहायक है? जीवाण पुग्गलाण, जीवों के गमन और ठहरने में और पुद्गलों के गमन और ठहरने में धर्म और अधर्म द्रव्य सहायक है। और बिन्नी भी लोग प्रमाणानी, और दोनों ही लोक के प्रमाण हैं, यानी जितना बड़ा लोक है उतने ही बड़े धर्म और अधर्म ये दो द्रव्य हैं। सैलानंदवाणम जमदादुम सक्कदे अवगासम तम आयासम दुविहम लोया लोयाण भेण। सभी द्रव्यों के लिए जो अवकाश देने को सक्कदे समर्थ होता है, यानी सबको स्थान देने में जिसकी सामर्थ्य है, तम आयासम वो आकाश द्रव्य है। दुवी हम दो प्रकार का है, लोया लोयाण भेण, लोक और अलोक के भेद से आकाश दो प्रकार का है आकाश एक। सव्वाणम दव्वाणम अवगाहन सत्य अथि परमथम ज भसम पाणियाणम जीव पैसाण बहुयाणम। सभी द्रव्यों के पास अवगाहन शक्ति परमार्थ से होती है, यानी स्थान प्राप्त करने की क्षमता सब द्रव्य के अंदर होती है। स्थान देने की क्षमता किसमें है? आकाश में। और स्थान पाने की क्षमता सब द्रव्यों में है। तो जीव पयसाण बहुयाणम, जीव के प्रदेश बहुत हैं, लेकिन तो भी अवगाहन शक्ति के कारण वो अनंत जीव इस एक लोकाकाश में ठहर सकते हैं। जह भस्म पाणियाणम, जैसे पानी में राख डालते जाओ कोई अंत नहीं है, आप राख डालते ही चले जाओ, एक ग्लास पानी में सब राख समा जाएगी। इसी प्रकार आकाश में सब द्रव्य समा जाते हैं। जदिन हवदि सासत्ति सहाय भूदा हि सव्वदवाणम एक एक कास पैसे कहता सव्वाणी वट्टंती। बोले कि यदि वह शक्ति स्वभाव रूप से सब द्रव्यों के पास न होती, स्थान पाने की क्षमता अगर सब द्रव्यों में नहीं होती, तो एक एक कास पये से आकाश के एक प्रदेश में कहता सव्वाणी वट्टते, वो सारे द्रव्य कैसे ठहर सकते थे? माने सब द्रव्यों में आकाश के एक प्रदेश के अंदर स्थान पाने की क्षमता होती है, लेकिन ठहरते ही एक प्रदेश में नहीं रहते, रहते लोकाकाश में, लेकिन क्षमता उनके पास होती है। सव्वाणम दव्वाणम परिणामं जो करे दिसो कालो, सो कालो सा छपाए क्या? एक एक कास पये से सो वट्टदि एक को चेव। सब द्रव्यों के परिणमन को जो कराता है वह काल द्रव्य है, यानी सारे द्रव्यों में जो परिवर्तन चलता है वो काल के निमित्त से चलता है, जैसे रेल पटरी के निमित्त से चलती है, वैसे जीवों पुद्गलों और बाकी सब द्रव्यों में जितना भी परिवर्तन चलता रहता है वो सब काल द्रव्य के निमित्त से होता है। और एक एक कास पय से, एक एक आकाश के प्रदेश पर, सो एक को चेव वट्ट दी, वह एक कालाणु ही वर्तता है। यानी आकाश के एक प्रदेश में, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित रहते हैं और काल उस रूप से फिर असंख्यात हो जाएंगे। जब आकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु है तो पूरे लोकाकाश में कितने होंगे? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने। लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात है। वो कितने असंख्यात हैं? तो जितने जीव द्रव्य के, एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं उतने ही लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, उतने ही धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं और उतने ही अधर्म द्रव्य के होते हैं। असंख्याह प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम नियणीय परिणामाणम नियणीय दव्वं पिकारणम होदि अन्नम बाहिर दव्वम निमित्तमित्तम व्याणेह। अपनी अपनी पर्यायों के कारण अपने अपने द्रव्य भी होते हैं और अन्य जो बाह्य द्रव्य हैं, माने मूल कारण तो अपना द्रव्य है परिवर्तन का। जो भी परिवर्तन अपने अंदर हो रहा है उस परिवर्तन का मूल कारण उपादान कौन है? अपना द्रव्य। भात बना तो उसका उपादान कौन है? किसके कारण बना भात? चावल के दाने के कारण। और फिर निमित्त भी होंगे वहाँ पर, तो अन्य जो बाहरी द्रव्य रहते हैं उसको निमित्त मात्र जानना चाहिए। सव्वाणम दव्वाणम उवयारो हवे जो उवयारो हवे अन्नोन्नम सोचिय कारण भावो हवदि हुसहयारि भावेन। सब द्रव्यों का जो उपकार परस्पर होता है वो एक दूसरे के किसी पर्याय में कारण बन जाते हैं, लेकिन वो कारण भाव जो होता है वो सहयारी भावेण हवदि निमित्त रूप से वो कारण बनते हैं। दूसरे द्रव्य इस पहले द्रव्य के परिवर्तन में निमित्त रूप से कारण बनते हैं, उपादान कारण तो वो द्रव्य स्वयं होता है। ठीक है ना, कारण दो प्रकार के हो गए, उपादान और निमित्त। कालाई लद्धि जुत्ता नाना सत्ती ही संजुदा अथा परिणम माणा ही सयम न सक्कदे को विवारे दुम। कालाधिक लब्धियों से युक्त और अनेक प्रकार की शक्तियों से संयुक्त अत्था यानी जो पदार्थ हैं वे जब स्वयं परिणम माना स्वयं परिणमन करते हैं तब को भी वारे दुम न सक दे कोई भी उनके परिवर्तन को रोक नहीं सकता। जीवाण पुग्गलाणम जी सुहुमा बादराय पज्जाया तीदाणागद भूदा सो व्यवहारो हवे कालो। जीव और पुद्गरों की जो सूक्ष्म और बादर पर्याय हैं तीन प्रकार की है, अतीत पर्याय, अनागत पर्याय और भूत पर्याय, वो सारा व्यवहार काल कहा जाता है। यानी व्यवहार काल जो है पराश्रित है, व्यवहार होता भी है पराश्रित, निश्चय स्वाश्रित हो निश्चय हो और व्यवहार पराश्रित है। समय सार ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार की एक टीका, एक गाथा की टीका में ये दिया है, निश्चय नय और व्यवहार नय। स्वाश्रितो आत्माश्रितो निश्चय नय पराश्रितो व्यवहार नय, ऐसा। तो व्यवहार काल किसको कहा? जीव और पुद्गलों की भूत भविष्य और वर्तमान संबंधी पर्याय हैं, बस वो जिसमें विवक्षित है वो व्यवहार काल हो गया। और निश्चय काल क्या है? जो कालाणु है, काल द्रव्य है, एक एक आकाश के प्रदेश में अपने अपने अलग अकेले विराजमान है, वो निश्चय काल है, काल द्रव्य। इसको निश्चय काल को श्वेतांबर मान्यता में स्वीकार नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा भेद है दिगंबर श्वेतांबरों में। श्वेतांबर मत में व्यवहार काल को तो माना गया है, इसलिए उनके तत्वार सूत्र के पंचम अध्याय में जो सूत्र है दिगंबर पाठ में कालश्च ऐसा एक सूत्र है, और श्वेतांबर पाठ में कालश्चेत्येके। कालश्चेत्येके का मतलब एक आचार्यों का वर्ग काल को भी द्रव्य मानता है, ये सूत्र दिया हमने। कालश्चेत्येके आगाज से छपा है वो तत्वार सूत्र भाष्य श्वेतांबर मत का, तो उसमें ये दिया उन्होंने कि कुछ एक आचार्यों का ऐसा वर्ग है जो काल को भी द्रव्य मानता है। अब वो दिगंबर आचार्य मानते हैं। अब इसमें दिगंबर आचार्यों का प्रश्न ये है उनके लिए, जैसे अभी केवली के कवलाहार की शंका थी ना बीच में चली थी, उसमें क्यों नहीं करते केवली भगवान कवलाहार, तो उसका जवाब अपने यहाँ कितना सॉलिड जवाब था। वैसे काल के लिए है कि आप पर्याय रूप काल को, व्यवहार काल को स्वीकार करते हैं लेकिन काल द्रव्य को नहीं मानते, तो जैन दर्शन में सबसे बड़ी समस्या यहाँ आएगी कि बिना द्रव्य के आप पर्याय को किस प्रकार मान सकते हो, वो पर्याय किसकी पर्याय है, ये शंका इसका क्या जवाब है। व्यवहार काल आपने माना, चलो भूत भविष्य वर्तमान ये काल की पर्याय है, लेकिन कौन से काल की पर्याय है? कोई द्रव्य होना चाहिए ना काल, अगर द्रव्य नहीं है तो पर्याय काय की है? जैसे नर नारक आदि पर्याय, अगर आप जीव को नहीं मानो तो किसकी पर्याय मानोगे आप? ऐसे पर्याय हवा में होती रहेगी क्या कोई भी अंधाधुंध? ऐसा तो नहीं है। तो बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती, इसी प्रकार बिना कालाणु के ये भूत भविष्य वर्तमान काल भी नहीं हो सकते। तेसु अतीतानंता अनंत गुणिदा विभावि पज्जाया एको विवट्टमाणु इत्यमित्तो विसो कालो। बस काल इतना मात्र है क्या? तेसु अतीतानंता, अतीत अनंत है, और अनंत गुणिदा वो भावी पर्याय, और भावी पर्याय जो है वो उससे अनंत गुणित है। और एक को भी वट्ट मानो, और वर्तमान जो है वो एक है, सब मिला करके पूरा व्यवहार काल कहलाता है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को मिला लो तो व्यवहार काल होगा, और वो व्यवहार काल जिसकी पर्याय है वो निश्चय काल, मूल काल द्रव्य है। ऐसा पूर्व परिणाम जुत्तम कारण भावेण वट्ट दे दव्वम उत्तर परिणाम जुदम तंचिय कज्जम हवे नियमा। पूर्व पर्याय से युक्त जो द्रव्य होता है वो कारण भावेण वर्तते, कारण रूप से वर्तता है, और उत्तर परिणाम जुदम तंचिय कज्जम हवे नियमा, और अगली पर्याय से युक्त जो द्रव्य है वो पिछली पर्याय का कार्य होता है नियम से। जैसे करण लब्धि रूप परिणाम युक्त जीव है, फिर उसके अगले समय में चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव है, तो जो उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं जो सम्यक के अभिमुख है, तो सम्यक के अभिमुख मिथ्या दृष्टि की जो पर्याय है, माने जीव की वह पर्याय जो सम्यक के अभिमुख मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि पर्याय का कारण है। आगे समझ में? अगली पर्याय का कारण पिछली पर्याय है, ठीक है, और अगली पर्याय पिछली पर्याय का कार्य है। कारण पिछली पर्याय और कार्य अगली पर्याय। जैसे जवान पर्याय का कारण बच्चा है, बचपन वाली पर्याय है, और बचपन वाली पर्याय का कार्य जवान वाली पर्याय है। जो श्रेणिक राजा प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न हुए, तो प्रथम पृथ्वी में जाना ये श्रेणिक राजा की पर्याय उसका कारण था, और वो जो पर्याय है वो इस पर्याय का कार्य हो गया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि पिछली पर्याय नियम से कारण होती है और अगली पर्याय नियम से कार्य होती है। कारण कज्ज विशेषा तीसु विकालेसु हुंति वत्थूणम्। एक एक कम्य समय पुवुत्तर भावमासिज्ज। और कारण कार्य के जो भेद बनते हैं तीनों कालों में, वत्थूणम यानी वस्तुओं के अर्थात द्रव्यों के, वो एक एक कम्य समय एक एक समय में बनते चले जाते हैं। पुवुत्तर भावमासिज्ज, पिछले समय की पर्याय अगले समय की पर्याय का कारण, अगले समय की पर्याय पिछले समय की पर्याय का कार्य, ऐसा चलता ही रहता है। अनादिकाल से चल रहा है, आज चल रहा है, अनंत काल तक के भी चलता रहेगा। संति अनंतानंता तीसु विकालेसु सवदववाणी सवंपि अणेयंतम तत्तु भणिदम जिणिंदेहि। तीसु भी कालेसु, तीनों कालों में सब दब्वाणी अनंतानंता संति, सब द्रव्य मिलाकर अनंतानंत होते हैं तीनों कालों में। और सबम पी अणेयंतम, और वे सारे के सारे अनेक रूप होते हैं। तत्तो इसीलिए जिनेन्द्र भगवान ने उन सबको अनेक रूप कहा है, जिनिंदेहि। स्याद अस्ति स्याद नास्ति ऐसे अनेक रूप कहा है। जम्बत्थु अणीयंतम तंचिय कज्जम करेदि नियमेन बहुधम्म जुदम अत्थम कज्ज करम दीस दे लोए। चूंकि वस्तु अनेकांत रूप है इसीलिए वह कार्य करने में समर्थ होती है, ये नियम है। क्योंकि लोक में बहुत गुणधर्मों वाली वस्तु ही कार्यकारी होती है, एकाद गुणधर्म हो तो काम नहीं चलता। एयंतम पुणुदव्वम कज्जम न करेदि लेसमित्तम्पि जंपुणु न करेदि न जंपुणु न करेदि कज्जम तम वुच्चदि केरिसं दव्वम। देखो पुणु दव्वम एयंतम, यदि द्रव्य को आप एकांत रूप मान लो, अनेकांत रूप न मानो, तो लेसमित्तम पि कज्जम न करेदि, वो थोड़ा भी काम नहीं कर सकेगा एकांत रूप मानने पर। और जमपणु न करेदी कच्चम, और जो कार्य ही नहीं कर सकता, तम केरिसम दब्बम बुच्छेदी, उसको द्रव्य कैसा कहोगे? यानी द्रव्य तो वो चीज़ है जो कुछ काम करे, जो काम ही नहीं कर सकता उसको द्रव्य कैसे कहोगे? परिणामीन विहीनम निच्चम दब्बम विनस्सदे नेव नो उपज्जेदि सया एवं कज्जम कहम कुणदि। अब अन्य मतों में माना है ना कि द्रव्य नित्य रूप ही होता है, कहीं माना है कि अनित्य रूप ही होता है, तो एकांत रूप मानने के क्या परिणाम निकलते हैं? कि उससे कोई काम नहीं सिद्ध होगा। जैसे परिणाम रहित पर्याय रहित अगर कोई नित्य द्रव्य मान ले तो विनश्यति नहीं, ऐसा मान ले सांख्य मत के अनुसार कि वो नष्ट हो ही नहीं सकता, सर्वथा पर्याय होती नहीं और फिर नष्ट नहीं होता द्रव्य। तो ऐसी स्थिति में नो उपज्जेदि सया, वो उत्पन्न भी नहीं हो सकता, तो कह कज्जम कहम गुणदि, फिर कार्य कैसे करेगा? जब तक उत्पत्ति और विनाश न हो तब तक कोई कार्य हो नहीं सकता। पुरानी अवस्था नष्ट होती है, नवीन अवस्था उत्पन्न होती है, तभी बोलते हैं कि काम हो गया। पूड़ी नहीं बन सकती अगर परिवर्तन न हो। गेहूं से आटा ना बने, आटे से कनक ना बने, कनक से बेलन पर जो पर्याय बन जाती है वो आकृति न बने, और उस आकृति को अगर तल कर पूड़ी न बनाया जाए तो परिवर्तन के बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो आचार्य कहते हैं कि परिवर्तन मानना पड़ेगा। तुम अगर अपरिणामी मानते हो द्रव्य को तो फिर कोई काम संभव नहीं है। सांख्य मत की ऐसी मान्यता है अपरिणामी। पज्जय मित्तम तच्चम विनस्सरम खणे खणे वि अन्नम अन्नैदव्व विहीनम न कज्जम किं पिसाहेदि। ये बौद्ध मत की मान्यता आ गई। बोले कि अगर तुम पर्याय मात्र मानते हो द्रव्य को, तत्व को, और खणे खणे विनश्वरम क्षण क्षण में विनश्वर मानते हो, ये अन्नन्नम अन्य अन्य रूप मानते हो, तो अन्वयी द्रव्य विहीनम निराधार है, कोई अन्वय द्रव्य है नहीं उसमें, तो ऐसी स्थिति में कज्जम किम्पि न साहदी कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकता वो। मैंने पाप किसी ने किया और फल किसी और को मिल रहा है, उसका क्या काम हुआ? जैसे आज दान पुण्य कमाया उसने किसी ने और उसके बाद नष्ट हो गया, क्योंकि हर चीज क्षण मात्र में नष्ट होती बौद्ध मत के अनुसार, तो वो नष्ट हो गया तो फिर दान पुण्य का फल किसको मिलेगा? किसी दूसरे को मिलेगा। तो फल अगर दूसरे को मिल रहा है तो फिर वो उसका फल कैसे कहोगे? यानी वो आधार ही समाप्त हो गया, आधार माना ही नहीं आपने, आप तो प्रतिक्षण दूसरा 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 ही मान रहे हैं। तो इसमें स्थिति ऐसी बन गई कि माला तो है लेकिन माला में अलग अलग दाने सब मान रहे हो पर अंदर धागा नहीं है, ऐसा मान रहे हो। तो द्रव्य को न मानकर सिर्फ अकेली अकेली पर्यायों को मानो क्षणिक क्षणिक, तो ऐसी स्थिति में बिना धागे के माला रह नहीं सकती, इसलिए कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। पर नित्य एकांत और क्षणिक एकांत में कार्य का अभाव बतला करके अब अनेकांत में कारण कार्य भाव सिद्ध होता है ये बतलाते हैं। नव नव कज्ज विशेषा तीसु विकालेसु होंति वत्थूणम एक एक कम्मीय समये पुवुत्तर भाव मासिज्ज। नए नए कार्यों के जो विशेष अर्थात भेद प्रभेद हैं वो वत्थूणम तीसु भी काले सुहुंती तीनों कालों में होते रहते हैं, और एक एक कम्य समय एक एक समय में पुवुत्तर भाव मासिज्ज। पिछले जो भाव होते हैं यानी पिछली जो पर्याय होती है वो कारण बनती है और अगली पर्याय उसका कार्य बन जाती है, इस प्रकार ये व्यवस्था चलती रहती है। मतलब कोई आधारभूत द्रव्य होता है उसमें एक पर्याय कारण बनती है दूसरी पर्याय कार्य बनती है, वो जो कारण बनी है उसका कारण कौन है? उसके पीछे वाली पर्याय, और उसके पीछे वाली पर्याय उस पर्याय का कारण है, इस प्रकार चलता रहता कारण कार्य भाव। जैसे एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी पर पैर रखने में अपने लिए सहायक होती है, उसकी पिछली सीढ़ी इस सीढ़ी पर पैर रखने में सहायक थी, ये क्रम चलता रहता है, इसी प्रकार ये पर्यायों का क्रम जारी रहता है। पूर्व परिणाम जुत्तम कारण भावेण वट्ट दे दव्वम। ये क्या रिपीट हो रहे हैं पेज? एक मिनट अपन देख लेते हैं पिछली, क्योंकि जो के त्यों आ रहे 222 भी गाता देखो। टीका में अंतर है लेकिन गाथा तो ज्यो की त्यों है। क्या है कि अब भी पढ़ा ना, आज ही पढ़ा अपन ने, इसलिए अभी इतनी याददाश्त तो कमजोर नहीं कोई बात नहीं, दो बार भी गाथा आ सकती है, उसमें कोई निषेध नहीं है। जैसे अष्टपावर में एक गाथा आती है, जिण वयण मोसह मिणम, ऐसे कई ग्रंथों में कुछ गाथाएं डबल बार भी आती है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है गाथाएं। एक गाथा ऐसी है कि आचार्य कुंदकुन स्वामी ने नियम सार में लिखी है, समय सार में लिखी है, प्रवचन सार में लिखी है, अष्टपावर में लिखी है और पंचास्तिकाय में लिखी है। एक गाथा है ऐसी, आप क्विज में पूछना कभी किसी से, जो इन ग्रंथों में ज़्यादा रुचि रखने वाले लोग हैं उनसे पूछना कि वो कौन सी गाथा है। फिर हम तो है ही बैठे हुए हैं, उसमें कोई खास चिंता की बात ही नहीं। एक ऐसी गाथा है आचार्य कुंदकुन स्वामी की जो पांचों ग्रंथों में, यानी कितनी प्रिय होगी आचार्य महाराज को। टीकाएं उसमें अलग अलग है। पद्मप्रभु मलधारी देव जी ने जो टीका लिखी है नियम सार में वो अलग है। फिर अष्टपावर में श्रुत सागर सूरी जी ने जो टीका लिखी है वो अलग है। समय सार की टीका जो अमृतचंद स्वामी ने लिखी वो अलग है, और अमृतचंद स्वामी ने ही प्रवचन सार में जो टीका लिखी है उसके ऊपर वो अलग है, और अमृतचंद स्वामी ने ही पंचास्तिकाय में उस गाथा की जो टीका लिखी है वो अलग है। बहुत ही अद्भुत गाथा है, मतलब ये तो एक मज़ेदार रोचक जानकारी है आपके सामने आज हमने रख दी। पूछना आप किसी से, परिचय में तो सब रहते ही हैं आसपास। पूर्व परिणाम जुत्तम कारण भावेण वट्ट दे दव्वम, उत्तर परिणाम जुदम तम ची कज्जम हवे नियमा। देखो इसको दोबारा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पहले कथन कर दिया था इसका 222 नंबर पे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अन्य मतों की मान्यताओं को रखा, और अन्य मतों की मान्यताओं को रखने के बाद फिर बताया कि वो बात बन नहीं सकती, और फिर अपनी बात को फिर से रखा कि देखो बात बनेगी तो ऐसे ही बनेगी। होता है ऐसा, कोई बात पुष्ट करनी हो तो इस तरीके से उसको खोला जाता है कि पूर्व परिणाम से युक्त अर्थात पिछली पर्याय से युक्त जो द्रव्य होता है वो कारण भावेण वट्ट दे, कारण रूप से परिवर्तन करता है, वर्तता है, और उत्तर परिणाम जदम तम चीय वही द्रव्य जब उत्तर अगली पर्याय से युक्त हो जाता है तो कज्जम हवे नियमा, नियम से वो कार्य रूप होता है। जैसे जो आटा है कनक वो कारण है, और पूड़ी जो है वो कार्य है, पूड़ी कार्य है और आटा कारण है, तो पिछली पर्याय कारण हो गई ना और अगली पर्याय कार्य हो गई, सीधा गणित हो गया, लेकिन वो आटा दोनों में रहेगा, कनक वाली पर्याय में भी और उसमें भी, इसलिए द्रव्य को मानना पड़ेगा। सिर्फ पर्यायों को मानने से निराधार पर्याय रह नहीं सकती, और सिर्फ द्रव्य को मानने से बिना पर्यायों के परिवर्तन हो नहीं सकता, आटे से पूड़ी नहीं बन सकती, इसलिए दोनों को मानना जरूरी है। जीवो अनाई निहणु परिणम माणु हुनव नवम भावम सामग्री सुपवट्टदि कज्जाणि समासदे पच्छा। जीवो अनाई निहणु, जीव तो अनादि निधन है, लेकिन नव नवम भावम परिणम माणु, वो नए नए पर्याय रूप परिणमन करता रहता है, और सामग्री सुपवट्ट दी उसके योग्य सामग्री मिल जाए उसको, माने उपादान और निमित्त दोनों का मेल बन जाए तो पयट्ट दी परिवर्तन कर लेता है, और पच्छा कज्जाणी समास दे, और फिर अपने कार्यों को कार्य रूप पर्यायों को समास दे, समाश्रित हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। सामग्री मिलनी चाहिए, अनुकूल सामग्री हो तभी पर्याय बनती है। जैसे उदाहरण के लिए सूखी हुई गुठली को अगर मिट्टी मिले तो फिर अंकुर निकलेगा, और तवा मिल जाए तो वो इतना फर्क होता है, यानी जैसा उसको निमित्त मिलता है पर्याय जो अगली बनेगी वो उस निमित्त के अनुरूप बनेगी, बनेगी उपादान में। ये अपने को ख्याल में रखना है कि वो गुठली को अगर आप अग्नि पर सेक लो तो फिर उसकी एक अलग पर्याय बनती है, और मिट्टी में उगा दो तो उसकी एक अलग पर्याय बनती है। तो निमित्त भी अपने स्थान पर अपना महत्व रखता है, काम उपादान में होता है। तो इसमें कहीं खींचातानी की बात नहीं है, ये तो हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से खींचातानी पैदा हो गई और फिर समाज में भेद प्रभेद हो गए। कितना सीधा साधा गणित है। अब वहां कह रहे कि पर्याय की खींचातानी मत करो, एक तरफ कह रहे द्रव्य की खींचातानी मत करो, तो भी खींचातानी करे कोई, तो फिर इसको क्या कहा जाए? सद्बुद्धि तो नहीं कह सकते। ससरूवत्थो जीवो कज्जम साहेदि वट्टमाणम्पि खेते एकम मिठिदो नियदव्वे संठिदो चेव। अपने स्वरूप में स्थित जीव वट्टमाणम कज्जम्पि साहेदि वर्तमान कार्य को सिद्ध करता है। एकम में खेते ठितो एक स्थान पर स्थित होकर के, नियदव्य संथिटो तेव अपने ही जीव द्रव्य में रहता हुआ वह जीव द्रव्य, यानी जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं बनता, जीव द्रव्य रहता हुआ ही वो अपना कार्य कर लेता है। ससरूवत्थो जीवो अन्न सरूवम गच्छदे जदिहि अन्नोन्न मेलनादो एक सरूवम हवे सर्वम। यदि अपने स्वरूप में रहने वाला जीव अन्य स्वरूप में चला जाए, यानी जीव शरीर रूप हो जाए, तो क्या होगा? तो अन्नोन्न मेलना दो, तो अजीव और जीव का मिश्रण हो जाएगा, और उस मिश्रण के कारण सर्वम एक सर्वम हवे, सब कुछ एक बन जाएगा। यानी जीव द्रव्य अलग नहीं रहेगा, अजीव द्रव्य अलग नहीं रहेगा, छह द्रव्यों की कल्पना भी, भेद प्रभेद भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये याद रखना कि सब द्रव्य कभी भी अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं है। अहवा बंब सरूवम एकम सब्वम पिमन्न दे जदिहि चंडाल बंभणानम तूण विशेषो हवे कोवि। अब देखो ब्राह्मणों की बात चल रही है कि कुछ ब्राह्मणों में ऐसी मान्यता है कि सब्वम एकम बंब सरूवम, क्या है कि उपनिषदों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। वैसे तो वेदों को ब्राह्मण परंपरा का माना जाता है और उपनिषदों को क्षत्रिय परंपरा का माना जाता है। दो प्रकार की धाराएं हैं हिंदुस्तान में, एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। पराविद्या क्षत्रियों की देन है और अपराविद्या ब्राह्मणों की। तो परा और अपरा का अर्थ समझ लो, परा का अर्थ होता है उत्कृष्ट और अपरा का अर्थ होता है अनुत्कृष्ट। तो परा यानी अध्यात्म विद्या, तो उसको वेदांत बोलते हैं। ये आपको जानकारी में हो या ना हो पता नहीं, लेकिन आज सुन लो कि वेद अलग वस्तु है और वेदांत अलग है। वेदांत का मतलब है उपनिषद, जो बिल्कुल शुद्ध आत्मा की चर्चा है उसमें, और वेद जो है उसमें पूरे वैदिक क्रियाकांडों का वर्णन है, होम हवन यज्ञ और बाकी जितने भी उनके यहाँ बहुत प्रकार के क्रियाकांड है, और उसको क्षत्रिय विद्या कहते हैं वो लोग। अब क्षत्रिय विद्या, अध्यात्म विद्या को क्षत्रिय विद्या कहने का क्या कारण रहा होगा, इस पर विचार करो तो पता चलता है कि मूल जो आत्मा का स्वरूप बताने वाले तीर्थंकर भगवान थे वो क्षत्रिय थे, इसलिए वो पराविद्या क्षत्रिय विद्या है। और फिर ये जो क्रियाकांड वाला जो चला है प्रचलन, उसमें ब्राह्मणों ने मुख्य रूप से क्रियाकांड का आश्रय किया है। यद्यपि इस बात को कभी मत भूलना कि जो कुछ भी बना है वो सब मूलतः तो वहीं से बना है। आदिनाथ भगवान ने जो जिनवाणी बताई थी उसी में से ये शाखा उपशाखाएं लोगों ने विभाजित कर ली और उसी में से अन्य मत उत्पन्न हुए। ये कभी भी मत भूलना कि अन्य मत नवीन रचना नहीं है किसी की, अन्य मत उसी में से किसी एक नए का पक्ष पकड़ करके तैयार हुआ मत है। इसलिए ब्राह्मणों का क्रियाकांड कह करके अपन जैन क्रियाओं को बंद नहीं कर सकते क्या? क्योंकि क्रियाकांड मूलतः कहां से आया था? तो इनने सिर्फ क्रियाकांड को पकड़ लिया, इसलिए वो एक संप्रदाय बन गया, एक मत बन गया। लेकिन क्रियाकांड मिथ्या है क्या? अगर अध्यात्म सापेक्ष हो क्रियाकांड, क्रिया निरपेक्ष अध्यात्म मिथ्या है और अध्यात्म निरपेक्ष क्रिया मिथ्या है। आया समझ में? मतलब जिस क्रिया के साथ अध्यात्म नहीं है वो क्रिया व्यर्थ है, और जिस अध्यात्म के साथ क्रिया नहीं है वो व्यर्थ है। नहीं आया समझ में? एकदम सरल से सरल भाषा में बात स्पष्ट हो रही है। कहने का मतलब ये है, आचार्य अकलंग देव ने उसका उदाहरण दिया, अंधश्च पंगुश्च वने प्रविष्टौ। तत्वार्थ वार्तिक में एक श्लोक आता है कि एक अंधा और एक लंगड़ा जंगल में प्रविष्ट हो गए, और क्या देखते हैं, जंगल में आग लग गई। अब क्या करें? अब अगर दोनों निरपेक्ष हो जाएं तो क्या होगा? पंगु देख सकता है, दौड़ नहीं सकता। अंधा दौड़ सकता है, देख नहीं सकता। दोनों मर जाएंगे, क्योंकि वो भलती जगह दौड़ेगा और ये देखते हुए निश्चल रहेगा, इसलिए दोनों की मौत निश्चित है। इसलिए फिर आचार्य अकलंक देव कहते हैं कि दोनों अगर मिल जाए, मतलब ये दृष्टांत है, मिल जाए तो फिर वो कहता है कि तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, अंधा कह रहा है, और तुम बताते जाओ किस तरफ दौड़ना है, मेरे पैर काम करेंगे, तुम्हारी आँख। आ रहा है समझ में दृष्टांत? और मैं बताता जाऊँ, तुम बताते जाओ और मैं दौड़ता जाऊँ, बस इसमें काम हो जाएगा। बस यही हाल है अध्यात्म और क्रिया का। अध्यात्म के बिना क्रिया अंधी है और क्रिया के बिना अध्यात्म पंगु है। है सुंदर दृष्टांत? आचार्यों के दृष्टांत कभी असुंदर होते भी नहीं, सुंदर ही होते हैं। अब दोनों मिल जाए तो, इसीलिए कहते हैं कि समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिका पढ़ने वालों को एक बार लघु तत्व स्फोट का भी स्वाध्याय करना चाहिए, और एक ग्रंथ योग सार प्रावृत। इन पांच का अगर स्वाध्याय कर लो तो शायद बुद्धि ठीक हो सकती है। बनारसी दास जी का एक दृष्टांत उस दिन अधूरा रह गया था कि उन्होंने समय सार पढ़ा और कपड़े उतार कर मुनि के समान कमरे के अंदर अपने मित्रों के साथ, विद्वानों के साथ बैठ गए कि चलो वो आनंद आ जाए। भावलिंगी साधु को जो आनंद प्राप्त होता है आत्मा में, वो आनंद हमें प्राप्त हो जाए, नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने फिर एक दोहा लिखा है। बनारसी दास जी ने खुद अपने अर्ध कथानक में एक दोहा लिखा है, करनी को तो रस मिटो, मिलो ना आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। ऊंट का पैर कितना टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऊंट की गर्दन टेढ़ी होती है, 18 अंग टेढ़े होते हैं ऊंट के। एक बार एक ऊंट ने कुत्ते से कहा कि तुम्हारी पूंछ कितनी टेढ़ी, बोले तो कुत्ते ने बोला कि तुम्हारे 18 अंग टेढ़े, उसको नहीं देख रहे हो तुम, मेरी पूंछ देख रहे हो, बोले। तो फिर बनारसी दास जी ने यही लिखा कि मेरी ऐसी हालत हो गई कि ऊंट के पैर, ऊंट के पैरों के समान, ऊंट के पैर ऐसे, जब वो सामने के पैर देखिएगा आप, कभी वो बीच वाला जो हिस्सा रहता है वो पैर कभी ऐसे टच नहीं हो सकते एक दूसरे से, ऊंट के पैर हमेशा दूर रहते हैं। उसी प्रकार मैं आत्मा के स्वाद से दूर रह गया। एक तो पहले मैं भगवान की भक्ति करता था, पूजा करता था, तो उसमें भक्ति का रस तो आता था, लेकिन अब समय सार पढ़ने के बाद वो भक्ति का रस भी छूट गया। अब ऐसी दुर्दशा हो गई कि भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है, अथवा उज्ज्वल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी, ये दशा हो गई। और मिलो ना आत्म स्वाद, आत्मा का स्वाद भी नहीं मिल सका। उसके बाद फिर बनारसी दास जी ने गोमट स्वार का स्वाध्याय किया, और गोमट स्वार का स्वाध्याय करने के बाद उन्होंने महसूस किया, अब मेरी पकड़ में आ गया कि मैं गलती कहां कर रहा था। तो अंधश्च पंगुश्च वने प्रविष्टो, दोनों जंगल में प्रविष्ट हो गए, जंगल में आग लग गई, और जब तक दोनों मिलते नहीं तब तक के दोनों की मौत निश्चित है। एक देखता हुआ भी मरेगा और दूसरा भागता हुआ भी मरेगा, क्योंकि अध्यात्म के बिना क्रिया अंधी है और क्रिया के बिना अध्यात्म लंगड़ा है। कितना सुंदर दृष्टांत! अब इतनी सीधी सीधी जो बातें हैं, दो और दो चार जैसे गणित जैसी, इसको भी लोग न समझ करके न जाने क्यों खींचातानी करके एकांतवादी बन जाते हैं और अपना अहित करते हैं। उनको एहसास है कि अपना अहित हो रहा है, वो चीज़ मिल नहीं रही है जो चीज़ सुनने में आती है, या फिर जो कुछ भी हो रहा है, जो बिल्कुल क्रियाकांड में लगे हुए हैं और अध्यात्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो यहाँ पर महसूस करते हैं कि भाई वो आनंद नहीं आता धर्म में। और फिर जो लोग सिर्फ ज्ञान ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्रियाओं को बिल्कुल व्यर्थ समझ रहे हैं, उनके जीवन में भी वो आनंद नहीं आता। सिर्फ शब्दों में वो रस है, चर्चा में क्या एक बौद्धिक मजा आता है थोड़ा सा, और इनको क्रियाओं को करते समय कुछ थोड़ी हलचली होती है ना, उसमें गतिविधि में उनको मजा आता है, लेकिन गतिविधि प्रगति नहीं है, प्रगति अलग होती है, गतिविधि अलग होती है। तो दोनों भटके हुए लोग हैं। आचार्य कहते हैं कि दोनों को मिला लो, झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों एक दूसरे की बात को समझ लो और स्वीकार कर लो, विवाद समाप्त। एक दूसरे की बात माने दोनों नयों की बात कर रहे हैं, दोनों पंथों की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि पंथ जो होते हैं वो मिथ्या ही होते हैं। पंथ क्या, वो एकांतवाद हो गया ना, तो फिर उनका प्ररूपण ही कुछ अलग प्रकार का होगा। वो आप उनसे अध्यात्म समझने जाओगे तो आपकी क्रियाएं छूट जाएगी, वो आपसे क्रियाएं सीखने आएंगे तो उनका अध्यात्म छूट जाएगा, दोनों तरफ से नुकसान है। वैसा होता कम है, होता यह है कि जहां मेहनत होती है उसको व्यक्ति आसानी से अपनाता नहीं है, और जहां सुख सुविधा होती है उसको लोग आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, ये स्थिति है। तो यहां कहते हैं कि अगर ऐसा मानोगे कि सब एक ब्रह्म स्वरूप है, अन्य मतों में है एक ऐसा मत कि सर्वं खल विदं ब्रह्म नास्ति नानेह किंचन, एक श्लोक आता है उपनिषद में कि सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, अनेक रूप कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा मानोगे तो फिर आचार्य महाराज उनसे पूछ रहे हैं कि फिर तुम चांडाल और ब्राह्मण को एक क्यों नहीं मान लेते, वहां पर तो तुम ब्राह्मण बने रहते हो और फिर वो चांडाल है, छूना मत हमें, वहां पर फिर ये छुआछूत वाली बात करते हो और फिर दूसरी तरफ ये कहते हो कि सब एक है, सब एक ब्रह्म स्वरूप है। यदि सब एक ब्रह्म स्वरूप है तो फिर ये भेद क्यों, तो तुम्हारी मान्यता का तुम्हारे ही मुंह से खंडन हो रहा है कि बोले हम अलग है, हम ब्राह्मण है और तुम चांडाल हो, तुम अलग हो, दूर रहो, और एक तरफ कह रहे हो कि सब एक है, तो कहां समानता कहां रही, दो अलग अलग कथन हो गए एक ही मुंह से। और जैन दर्शन जो बात करता है वो अपेक्षा लगा करके करता है कि इस अपेक्षा से ऐसा है और उस अपेक्षा से वैसा है, दोनों को गलत नहीं कहता और दोनों को भी सर्वथा सही नहीं कहता, कथनचित दोनों को स्वीकार करता है। और फिर आगे और भी मान्यता है, कुछ लोग मानते हैं कि जो तत्व है वो बहुत छोटा परमाणु के बराबर होता है, कुछ लोग अंगुष्ठ के बराबर मानते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, उन सब का समाधान आगे की गाथाओं में आचार्य महाराज करेंगे। आज 234 गाथाएं हो गई।